अगर कोई तामीर के लिए कांटेक्ट करना चाहे तो हम उसके लिए भी नंबर दे देंगे, अगर कोई हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहे तो हम उसके लिए भी आपको नंबर दे देंगे। लेकिन प्लीज़, ज़रूरी नहीं है मैं तामीर का नाम ले रही हूँ कि आप सिर्फ तामीर में आएँ। तामीर में हम इन डेप्थ स्टडी करते हैं, बिल्कुल जैसे हम यहाँ सूरह यासीन पे कर रहे हैं, थोड़ा सा और ज़रा वक्त लगाते हैं आयात के ऊपर। यहाँ तो हमने 18 दिन में सूरत कंप्लीट की है। तामीर में हमने सिर्फ एक सूरत को अपना कोर्स बनाया हुआ है, सूरत अनकबूत, और उसका टॉपिक ही पेशेंस है, थीम पेशेंस है, हकीकत उस सबर है। तो वो उसमें ये सारे सवालों के जवाब आपके मेजॉरिटी मिल जाते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसानों के ऊपर जो इब्तला का मामला रखा है, आजमाइश का मामला रखा है, किस किस तरह इंसान उसको अपने लिए किस फ्रेम में फिट करके अपने फ़ायदे की चीज़ बना सकता है। तो अल्लाह ताला ने अब यहाँ पर जो मामला सामने मेंशन किया आयत नंबर 68 में, ये अल्लाह ताला ने बताया कि अभी तक जो दो मामले थे वो तो सज़ा के लेवल से मामले थे, लेकिन अगर किसी इंसान को सज़ा ना भी मिले, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मल्टी बिलियनियर होते हैं और अल्लाह के बहुत बड़े नाफरमान होते हैं और आखिरी उम्र तक अल्लाह की नाफरमानी ही करते रहते हैं, बज़ाहिर दुनिया की कोई सज़ा उनके ऊपर नहीं आती, वो भी अगर चाहें तो अपनी आंखों का दुरुस्त इस्तेमाल करके, अपने अक्ल और शऊर का दुरुस्त इस्तेमाल करके अल्लाह तक पहुँच सकते हैं। अल्लाह ने कहा चाहे कोई सज़ा के बाद ना पलटे। एक नेचुरल फिनोमेना तो इंसान को नज़र आता ही है कि जिसमें उसके जिस्म में कमज़ोरी आ जाती है, अल्लाह आंखें ना मस्त करे, एक वक्त आता है नज़र तो कमज़ोर हो ही जाती है। अल्लाह ना तुम्हें तुम्हारी बॉडी को म्यूटिलेट करे, एक वक्त आता है तुम्हारी बॉडी रिवर्स गियर पर आ ही जाती है, ताकत ख़त्म हो जाती है, हड्डियों में जान नहीं रहती है। आयत नंबर 68 में फरमाया वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फिल खल्क, जिसको हम बुढ़ापे की उम्र देते हैं उसको हम रिवर्स क्रिएशन में रिवर्स गियर लगा देते हैं, अपनी ज़ुबान में अगर हम इसको बोलें तो, जिसको हम बुढ़ापे की उम्र देते हैं, लंबी उम्र देते हैं, नुअम्मिर हो उसको क्या करते हैं, नुनक्किसु फिल खल्क, उसको तख्लीक में रिवर्स कर देते हैं। अफला या अकिलून, तो भला तुम क्या अक्ल से काम नहीं लेते? आंखें मिटाने की बात की, जिस्म बिगाड़ने की बात की, और अब अल्लाह ने कहा कि जिस्म बीमारी से ना भी बिगड़े, खलकत बुढ़ापे से तो बिगड़ ही जाती है। बुढ़ापा देख के तो कुछ याद आना ही चाहिए, अगर नौजवानी में अल्लाह याद नहीं आया, अगर जवानी में अल्लाह याद नहीं आया, अगर एडल्टहुड में अल्लाह याद नहीं आया, बुढ़ापे में तो अल्लाह याद आना ही चाहिए हर इंसान को। इमाम अलूसी हमज़ा के साथ है, हमज़ा लाम वाव सीनिया। इमाम अलूसी जो हैं वो एक मुफस्सिर कुरान है, उन्होंने इस आयत की तफसीर में लिखा है कि इसमें अल्लाह ताला ने बड़ी हिकमत के साथ, इसलिए कि कुरान हकीम है ना, वल कुरान अल हकीम, हमने आयत शुरू की थी सूरत यासीन की, तो बड़ी हिकमत से कुरान जो है एक बच्चे और बूढ़े का कंपैरिजन करा के सोचने पर मजबूर करता है। इसलिए कि जब बच्चा छोटा होता है तो आप नोट करें, बच्चा कॉन्स्टेंटली छत पर देखता रहता है। आप कभी नोट करें जो न्यू बॉर्न बच्चा होता है वो तो छत पर बहुत देखता है, आंखें फाड़ फाड़ के देखता रहता है, और आंखें भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फटी हुई होती हैं। फिर थोड़ा चलना शुरू करेगा तो आप उसको नीचे बिठाएंगी, उसके उस एक सर्टन एरिया बना के, तो वो सोफे पे देखेगा, खड़ा होने की कोशिश करेगा, ऊपर देखेगा। इमाम अलूसी कहते हैं कि जो बच्चा होता है उसका माइंडसेट होता है लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स ग्रोथ, तो वो आसमान की तरफ देखता रहता है, ऊपर की तरफ देखता रहता है, ऊपर की चीज़ों को देखता है, एज कम्पेयर टू बूढ़ा इंसान जिसकी कमर झुक गई। अब उसकी नज़रें कहाँ होती हैं? कमर झुकी होगी तो ज़ाहिर है चेहरा भी झुका होगा, और चेहरा झुका होगा तो ज़मीन को देखता है, और अल्लाह ताला उस बूढ़े इंसान को, उसकी नज़र को ज़मीन की तरफ करके उसे कुछ याद कराने की कोशिश करते हैं। जैसे बाज़ औक़ात आप अपने बच्चे को कोई चीज़ बताना चाह रही होती हैं, आप बैठी अपने बच्चे को होमवर्क करवा रही हैं, और आपने उसको एक दिन पहले कहा था कि मैं तुम्हारा इस चैप्टर का, इस सब्जेक्ट का टेस्ट लूँगी, और आप कुछ कह रही हैं, कुछ कहा था मैंने कल शायद, कुछ कहा था कल मैंने शायद, कह रहा है पता नहीं भूख लग रही है, पता नहीं भूख लग रही है। फिर आप एक कॉपी पकड़ती हैं, आप कहती हैं ये देखो, इस कॉपी दिखाती हैं, कुछ बोलती नहीं है। जब आपने कॉपी दिखाई, लेट से आपने कल कहा था कि मैं मैथ्स का टेस्ट लूंगी चैप्टर नंबर 5 का, तो अम्मा क्या करती हैं, अम्मा सिर्फ कहती हैं कि ये देखो मैथ्स की कॉपी आपने सामने कर दी उसको याद कराने के लिए कि देखो मैथ्स की कॉपी में तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगी। अल्लाह ताला कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ इंसान की कमर झुका के उसका चेहरा जमीन की तरफ करके उसकी नजरों की डायरेक्शन जमीन की तरफ कर देते हैं। एक वक्त था तुम आसमान की तरफ, ग्रोथ की तरफ देखते थे, अब तुम वापस अपने ओरिजिन की तरफ देख रहे हो, जहां से खमीर उठा था अब इसी कब्र में जाने वाले हो, इसी जमीन के पेट में जाने वाले हो। तो अक्लमंद है वो बूढ़ा इंसान जिसको अपने बुढ़ापे में अल्लाह याद आ जाए, अक्लमंद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मफहूम के मुताबिक जिस इंसान को 60 साल की जिंदगी दी गई और उसने उस 60 साल की जिंदगी में अल्लाह तक पहुंचने की कोशिश नहीं की, तो अब इसकी 60 साल की जिंदगी उसके खिलाफ गवाही देगी। और 60 साल की जिंदगी आजकल तो कोई जिंदगी नहीं लगती, 60 साल का इंसान, खासतौर पर खवातीन 60 साल की होती हैं तो भी 30 साल की लग रही होती हैं, है ना। अल्लाह ताला ने हिकमतों के खजाने इस कुरान में रखे हैं। जब जमीन की तरफ नजर चली जाए तो अल्लाह चाहता है बंदे को अपनी कब्र याद आए, बंदा अपनी फितरत की तरफ वापस लौटे। आप देखें, बच्चा रात में सोता नहीं है ना, फितरत पे वापस लौटने का मतलब क्या, बच्चा बन जाता है। बच्चा रात में बेचैन रहता है ना, जिन माओं के न्यू बॉर्न बच्चे, उनसे पूछें बेचारों से, सारी सारी रात भी जागेंगी और फिर दिन में भी जागेंगी, बेचैन रहता है ना बच्चा। बुढ़ापा आता है तो इंसान में बेचैनी आ जाती है, नींद खत्म हो जाती है, बार बार आंख खुलती है, इंसोमिया हो जाता है, लोगों को नींद ही नहीं आती, सो ही नहीं पाते। उसके ऊपर फिर बूढ़ा इंसान क्या करता है, पिल्स ले लेके सोता है। मत लें पिल्स, वुजू करें। अगर आपको भी ऐसी तकलीफ हो गई है कि आपको नींद नहीं आती है, तो अल्लाह आपको जगाना चाह रहा है, अल्लाह चाह रहा है आप वुजू करें और इबादत के लिए खड़े हो जाएं या बैठ जाएं, या लेटे लेटे अल्लाह की बात करें, अल्लाह से इबादत करें, 2 रकत पढ़ लीजिए, कुरान पढ़ लीजिए, कोई किताब पढ़ लीजिए, कोई अच्छी बात सुन लीजिए। अल्लाह ताला बैक टू ओरिजिन क्यों लेके जा रहा है, खलकत में वापस क्यों पलटा रहा है, अल्लाह अपनी तरफ इंसान का ध्यान करवाना चाहता है ताकि इंसान अपनी अल्लाह से मुलाकात की तैयारी करे। बच्चों को गुस्सा ज्यादा आता है, जब इंसान बूढ़ा होने लग जाता है तो उनको बहुत गुस्सा आने लग जाता है। आप और मैं ये समझते हैं अभी मेरे बच्चे छोटे हैं इसलिए मुझे गुस्सा ज्यादा आता है, जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, जब मैं भी मैच्योर हो जाऊंगी, तो मैं गुस्सा ज्यादा नहीं करूंगी। उम्र के साथ याद रखें, जो जवानी की आदत होती है, अगर आपने उसको जवानी में टेम नहीं किया, कंट्रोल नहीं किया, तो बुढ़ापे में ये और वर्स हो जाएगी। जिसको जवानी में गुस्सा आएगा और उसने अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं किया, उसका बुढ़ापे में गुस्सा बहुत ही ज्यादा जहर आलूद हो जाएगा। ना सिर्फ वो अपने गुस्से से अपने आप को नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि उसके जुमले सामने वाले के जिस्म पर जो है वो छाले डाल देंगे। ऐसे बहुत से बूढ़े होते हैं। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मुझे बुजुर्ग बना, बूढ़ा ना बना, अल्लाह हमें बुजुर्गी अता करें। जब किसी बूढ़े इंसान में बुजुर्गी आ जाती है तो उनके अंदर अपने नफ्स का कंट्रोल सलामत रहता है। जैसे बच्चे में गुस्सा है, इसी तरह से ओल्ड एज में भी गुस्सा आ जाता है। बच्चा अपने आप को संभाल पाता है? न्यू बॉर्न बच्चे या 1 साल 1.5 साल के बच्चे को जहन में लाएं, वो अपने आप को संभाल नहीं पाता। इसी तरह से जब इंसान अपनी खलकत में रिवर्स होता है, बूढ़ा होता है, तो फिर उसको भी संभालने वाला कोई चाहिए होता है। बिल्कुल जैसे आप अपने बच्चे की डाइट का ख्याल रखती हैं, बूढ़े माँ बाप की डाइट का भी ख्याल रखना होता है, उनको एक पैटर्न पे खाना खिलाना होता है वरना उनको हजम नहीं होता। ये अल्लाह ताला ने खलकत में जो रिवर्स लगाने की बात की है, इसमें बड़ी हिकमत है। जो समझना चाहे वो इससे समझ सकता है। छोटे बच्चे के लिए आप कार सीट इस्तेमाल करते हैं, बूढ़ा इंसान व्हील चेयर इस्तेमाल करता है। छोटे बच्चे के लिए प्राम चलती है ना साथ साथ, आप मॉल में जा रही हैं, प्राम चल रही है, बच्चे के साथ साथ स्ट्रॉलर चल रहा है। बुढ़ापा आएगा, यही स्टॉलर जिसमें मैं बैठती थी, अल्लाह ना करे फिर हमें व्हील चेयर पर बैठना पड़ता है। अल्लाह खलकत बदल देता है और अल्लाह ये खलकत भी बदलता है ताकि अल्लाह की मुलाकात का वक्त इंसान को याद आ जाए। तो अल्लाह ने कहा वमन नुअम्मिर हो नुनक्किस हो फिल खल्क, जिसको हम बड़ी उम्र देते हैं उसको हम तखलीक में रिवर्स करना शुरू कर देते हैं। बच्चे की हड्डियां कमजोर होती हैं और बूढ़े इंसान की हड्डियां, बूढ़े इंसान फ्रिजाइल हो जाते हैं। आप देखें ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है बहुत सी खवातीन को, और ना चाहते हुए भी कोई चोट नहीं लगेगी, कोई नहीं गिरेंगी, कोई झटका नहीं लगेगा, पता चला हेयरलाइन फ्रैक्चर आ गया। तो अल्लाह तो तखलीक में वापस पलट जाता है। बच्चे से बोला नहीं जाता और बूढ़ा इंसान उससे भी बोला नहीं जाता। बाज़ औक़ात एक बात को कई मरतबा डिमेंशिया हो जाता है। बूढ़े माँ बाप बात को कितनी मरतबा रिपीट करते हैं? कभी जब माँ बाप बात को रिपीट करें और आपको गुस्सा आ रहा हो, आप जिटरी हो रही हो, तो कभी ये ख्याल नहीं आता कि मैं भी तो इनकी जगह हो सकती हूँ? वो कहानी आपने बचपन से सुनी होगी, हमारे तो अब्बा ने बचपन से सिखाई थी, अब्बा बेटा और कौवा। हाँ, बहुत ही मशहूर कहानी है कि अब्बा बेटे को पार्क में लेके जाते हैं और बेटा 20 दफा पूछता है अब्बा ये क्या है, और अब्बा एक ही कैसेट के स्टाइल में बेटा ये कौवा है, बेटा ये कौवा है। अब्बा से वो 20 दफा सवाल करता है अब्बा ये क्या है, बेटा ये कौवा है। और फिर 20-25 साल के बाद उसी पार्क में अब्बा और बेटा बैठे होते हैं कि सामने दरख्त पर आकर कौवा बैठ जाता है और अब्बा पूछते हैं ये क्या है, बच्चा अपने मोबाइल फोन के ऊपर से आंखें उठा के कहता है कौवा। जुमला बोलना भी हमारे बच्चे क्या हम खुद, हम कम माँ बाप के साथ जो हैं वो बेअदबी करते हैं हम माँ बाप। और ख़ासतौर पे ये होता है, शैतान बहुत तेज़ी से ट्रैप करता है उन लोगों को जो दीन पढ़ने पढ़ाने में आ जाते हैं। आप बिजी हैं, आप तो दीन पढ़ा रहे हैं, आपकी अम्मा को नहीं पता आपको उनको आपको किस टाइम पे फ़ोन करना है और किस टाइम पे फ़ोन नहीं करना। और फिर बड़ी बड़ी जवान बेटियां कैसे माओं को झड़क देती हैं। माँ बाप के दिल बहुत नरम होते हैं, बिल्कुल जैसे बच्चों के दिल बहुत नरम होते हैं। ये अल्लाह ताला ने मुझे और आपको खलकत का रिवर्स गियर जो दिखाया है वो इसलिए भी दिखाया है कि बहुत जल्दी तुम भी इस जगह पर आने वाले हो। वक्त अपने वक्त को मत भूल जाओ। बेटे से बाप ने दूसरी दफा पूछा कि बेटा वो सामने क्या है, लगता है आपकी प्रिस्क्रिप्शन खराब हो गई है चश्मे की, आप शाम को चलिएगा, आपको नंबर चेंज करवा दूंगा ऐनक का। बाप ने ऐसे बोला था। इंसान के पास अपनी ज़िंदगी में सीखने के लिए कई चीज़ें और कई बातें मौजूद हैं। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें अपने बुढ़ापे में सेहत और ईमान के साथ बुजुर्गी अता फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ल उमर से पनाह मांगी है कि जिसमें इंसान अपने खलकर की तरफ रिवर्स गियर लगाना शुरू कर दे। हम अल्लाह से नागहानी मौत नहीं मांगते, हम अल्लाह से आजमाइश नहीं मांगते। अल्लाह ने हम पर जो जिम्मेदारियां डाली हैं, अल्लाह हमें उन्हें ऐसे तरीके से पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। मोमिन के लिए सेहतमंद ईमान वाली लंबी उम्र पसंदीदा है, इसलिए कि वो अपने ज्यादा जो है वो आसार पीछे छोड़ने के लिए जो है वो दुनिया को बेहतर जगह बनाता है। मांगे अल्लाह से उम्र, लेकिन साथ में ईमान की ताकत और अर्दल उम्र से पनाह मांगिए। मांगिए अल्लाह से कि अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रख, जब तक मेरे जिंदा रहने में खैर है, और मुझे उस वक्त मौत दे दे जहां मेरा जिंदा रहना मुझे गुनाहों की तरफ घसीट लेगा। जितनी आप दुआ मांगेंगी इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाएगा। और इससे पहले इस वक्त जो जिस उम्र के हिस्से में है, और मैंने पहले ही कह दिया आप सब नौजवान हैं, अपनी जवानी को अपनी यूथ को अल्लाह के रास्ते में इस्तेमाल करें। दिन रात गुजर रहे हैं, औलाद पल रही है, खाने पक रहे हैं, इफ्तारियां सहरियां सब चल रही हैं, ईदें आकर गुजर रही हैं, सब हो जाएगा। ये रमज़ान का महीना जो आप लोगों ने 15-18 दिन लगा दिए, जब रमज़ान गुजर जाएगा और जब ये ख़त्म होगा तब आपके दिल से शुक्र निकलेगा, शुक्र मैं थक गई। ना आते ना कमिटमेंट करते तो रमज़ान तो फिर भी गुजर ही जाना था, और इतनी तेज़ी से ही गुजरना था। सो थक जाए अल्लाह के रास्ते में। अल्लाह के रास्ते में थकना मुबारक है, कोई नहीं अल्लाह के रास्ते में थकने से मरता। मैं बता दूँ आपको, कोई कभी आपने सुना कि वो अल्लाह के रास्ते में काम कर करके मर गई? मर भी गई तो क्या हो गया, अच्छा सौदा है कि बुरा सौदा? शहीद हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। हम कहते हैं हाँ ये अल्लाह ना करे मैं अल्लाह के रास्ते में मर जाऊं। शहादत की तमन्ना और शहादत की दुआ किया करें, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मफहूम के मुताबिक मुनाफिक है वो दिल जिसने कभी शहादत की तमन्ना नहीं की। और आपको और मुझे शहादत कैसे मिलेगी? शहादत का बेहतरीन, शहादत के कई लेवल्स हैं, कई अहादीस में शहादत के लेवल्स बताए गए हैं। सबसे टॉप लेवल है अल्लाह के रास्ते में क़िताल करते हुए दुश्मन की फौज के सामने इस्लाम का अलमबरदार बन के आ जाना और फिर मारे जाना, वो सबसे टॉप लेवल का शहीद है। लेकिन इसके अलावा शहादत के बहुत दर्जे हैं। अल्लाह के रास्ते में जिहाद करता हुआ, कोशिश करता हुआ अगर अल्लाह के रास्ते में थकने की वजह से मर गया, शहीद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जितना वक्त अल्लाह के रास्ते में लगा सकते हैं लगाइए। हमारे आज के मसलों का हल इस किताब में मौजूद है, जिस किताब को हमने सिर्फ इसाले सवाब का जरिया और घरों के अंदर बरकत का जरिया समझा हुआ है। हमारे मसलों के हल हैं इस किताब में। हमारे स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करने के लिए वर्चुअल हॉर्मोन्स हैं इस किताब में, विदाउट सिंगल डाउट। इसके अंदर प्रिस्क्रिप्शंस मौजूद हैं हमारी टेंशंस की। इसे खोलें तो, इसे समझें तो, इसके करीब तो आए। इसको कंटेजियस बीमारी ना समझें नाउज़ुबिल्लाह, क्योंकि मैंने इसको पढ़ना शुरू किया तो मुझे अपनी जिंदगी को अपसाइड डाउन बदलना पड़ेगा, वो तो मैं तैयार नहीं हूं। कंफर्ट जोन छोड़ना आसान नहीं होता, बिल्कुल जैसे अपनी नींद को तोड़कर तहज्जुद के लिए उठना आसान नहीं होता है। लेकिन जो कंफर्ट जोन छोड़ते हैं अल्लाह की नजर में महबूब हो जाते हैं, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह की खातिर अपना कंफर्ट जोन छोड़ा है। तो अपनी जितनी फैकल्टीज हैं उनको आखरत कमाने के लिए लगाइए। अल्लाह ताला ने आपको और मुझे बेहतरीन इंसान बनाया है, अशरफुल मखलूकात, मुसलमान घराने में पैदा किया, इस्लाम की नेमत दी और अल्लाह की रहमत के आपको और मुझे कुरान के सामने लाकर बिठा दिया। और क्या चाहिए, और कितने खजाने चाहिए, और कौन सी हुज्जत चाहिए तमाम करने के लिए? अपने आप को अल्लाह के रास्ते पर लगाइए। अल्लाह ने आखिर में इस आयत में कहा अफला ताकिलून, अक्ल से काम नहीं लेते हो? जिंदगी तो बहुत तेजी से गुजर रही है, अगर आज जुबान बहुत तेज चलती है, अगर आज जहन बहुत अच्छा चीजों को कॉम्प्रिहेंड कर सकता है, अगर आज प्लानिंग बड़ी अच्छी होती है, अगर आज स्ट्रेटेजीज बहुत अच्छी बना सकती हो, तो बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है जब खलकत में रिवर्स आना शुरू हो जाएगा। ना आंखें वैसी शार्प होंगी, ना जहन वैसा शार्प होगा, ना जिस्म में वैसी एक्टिवनेस रहेगी। इस वक्त से पहले अपनी जवानी का इस्तेमाल कर लीजिए। गनीमत जानो अपनी जवानी को बुढ़ापे से पहले। और याद रखिए, जवानी की इबादत पसंदीदा है। वो जो अल्लाह के अर्श के साए में 7 कैटेगरीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आती हैं, उसमें जो एक कैटेगरी है वो नौजवान जो जवानी में अल्लाह की इबादत की तरफ भागता था। और नौजवान से मतलब मर्द नहीं है सिर्फ, मर्द और औरत कोई भी, जो भी अल्लाह की तरफ इबादत के लिए दौड़ता था, अल्लाह उसको उस दिन जिस दिन कोई साया नहीं होगा अपने अर्श के साए में जगह देगा। अल्लाह ने कहा है अकल का इस्तेमाल करो, यूज योर यूथ इंटेलिजेंटली। अपने बच्चों को उनकी जवानी के बेहतरीन इस्तेमाल की तरफ लेकर आइए। हमारे बच्चों में बहुत पोटेंशियल है इस माशरे के अंदर अच्छी पॉजिटिव तब्दीलियां लाने का, ना सिर्फ इस माशरे में, दुनिया में। और प्लीज, यहाँ बहुत कम बच्चे बैठे मेरे सामने इस एज ब्रैकेट के, पाकिस्तान को अपने लिए मुसीबत मत समझा करें। पाकिस्तान एक बहुत बड़ी नेमत है। मैंने एक दिन पहले भी कहा था, कितना भी बुरा सही, देखें बुरा हमने ही किया है, इंसानों ने बुरा किया है। ये वो वाहिद मुल्क है जो मैप पर अपीयर हुआ है दुनिया के ऑन द नेम ऑफ इस्लाम, कोई और नहीं है। सऊदी अरब का भी नक्शा जियोग्राफिकली ऐसे नहीं अपीयर हुआ कि ये मुसलमान मुल्क अपीयर हो गया, वो बाउंड्रीज ऑलरेडी मौजूद थी, मुसलमान इन्वेड करते रहे और उसके बाद फिर वो एक अलग से जो था वो मुल्क मुस्लिम मुल्क बन गया। ईरान की बाउंड्री ऑलरेडी मौजूद थी, कूफा की बाउंड्री ऑलरेडी मौजूद थी, इराक की बाउंड्री ऑलरेडी मौजूद थी, अफगानिस्तान की बाउंड्री ऑलरेडी मौजूद थी, मुल्क मुसलमान इन्वेड करते रहे, इन्वेजन होते रहे और वो पूरे पूरे मुल्क मुसलमान होते गए। पाकिस्तान अलग से मैप पर लाइंस लगाकर आप पाकिस्तान का नक्शा बनाएं, ये अपीयर हुआ है दुनिया के मैप के ऊपर एज अ मुस्लिम कंट्री। इसको छोड़ के भाग जाएंगे, किस चीज से डरते हैं? हम में से जितने भी लोग ये चाहते हैं कि बस हमें यहां से निकलना है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बाहर दुनिया में किसके लिए भाग रहे हैं? फिर हम कहते हैं हम हुब्बुद दुनिया का शिकार नहीं है, हम सिर्फ दुनिया के लिए भाग रहे हैं। किसी का नाम याद नहीं रहता कि किसका करियर कितना बड़ा था और कौन कितना बड़ा मल्टी बिलियनेयर था। 4 लोग याद रखेंगे, 10 लोग याद रखेंगे, 50 लोग याद रखेंगे, लेकिन वो लोग जो तारीख का धारा बना रहे होते हैं, जो मुल्कों की डायरेक्शंस बदल रहे होते हैं, उनके नाम नस्लों में याद रखे जाते हैं। इस मुल्क को मुसलमानों की और मुसलमान यूथ की जरूरत है। बाहर पढ़ने जाएंगे तो वापस आइए इस उम्मीद के साथ और इस डिटर्मिनेशन के साथ कि हम उस इल्म से और अपने वही की रोशनी से इस मुल्क को पूरी दुनिया के लिए एक रोल मॉडल मुल्क बनाकर दिखाएंगे। जिंदगी बेमकसद नहीं गुजारी जाती। और इतना छोटा मकसद मेरी जिंदगी का कि मैं बस बहुत अच्छा कमाने वाली हो जाऊं, बस दैट्स इट। आपने अपना लेसो इतना छोटा फेंका। जो जितनी ऊंची कमन डालता है उसके एम उतने हाई होते हैं, जो जितना ऊंचा अपना एम और विजन बनाता है वो उतना ज्यादा अपनी जिंदगी को प्रोडक्टिवली इस्तेमाल करता है। इस मुल्क को छोड़कर भागने की बातें मत किया करो। अगर आपके दोस्त करते हैं और आपको सिखाते हैं तो आपका काम है उनको सिखाएं। अल्लाह ने आपके कान पर कुरान डाल दिया है, ये नेमत है, क्या ये नेमत की नाशुक्री नहीं होगी? आप बड़े से बड़े फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर जाकर रहना शुरू कर दें और आपको सिटीजनशिप मिल जाए, आपको सिटीजनशिप मिल भी जाएगी तब भी आप सेकेंड ग्रेड सिटीजन होंगे वहां के। पाकिस्तान की दी हुई इज्जत रास नहीं आती इसलिए कि यहाँ करप्शन है। कुरैश के अंदर करप्शन नहीं था, कुरैश में गुनाह नहीं थे, कुरैश और अरब के माशरे के अंदर और वो पूरा जो खित्ता था मक्का का एज कम्पेयर टू मदीना वर्स्ट इलाका था गुनाहों के पॉइंट ऑफ व्यू से, शिर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से। अल्लाह ताला ने क्यों नहीं पहले ही मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपॉइंट किया? अल्लाह ताला ने मक्का में अपॉइंट किया। मैंने आपको पहले भी यह बात बताई थी, रसूल और इसी तरह वो लोग जो रसूलों के कामों पर लग जाते हैं वो उन जगहों पर फोकस करते हैं जहां गुनाह करप्शन ज्यादा होते हैं, इसलिए कि उनको उन लोगों को ठीक करना है। ये मुसलमान है, इस मुल्क को अपने लिए नेमत समझें और मुल्क को छोड़कर भागने की बात ना किया करें। अल्लाह ताला आपके जरिए इस उम्मत को दोबारा खड़ा करने में अपना हिस्सा डलवाए। मांगा करें अल्लाह से कि अल्लाह मुझे इस्लाम का फ्लैग बेयरर बनाए, अल्लाह मुझे इस मुल्क को खड़ा करने में अपना हिस्सा डालने वाला बनाए। बारिश का पहला कतरा कोई तो बनेगा, कोई तो करप्शन के खिलाफ आवाज उठाएगा, कोई तो बनकर दिखाएगा असल में सीएसएस करने के बाद एक अच्छा गवर्नमेंट ऑफिसर कैसा होता है, जो रिश्वत नहीं खाता है, जो सूद की तरफ हाथ नहीं बढ़ाता है। कौन ऐसा अच्छा पुलिस वाला होगा जो पुलिस वालों की रेपुटेशन और उनके डिपार्टमेंट को अच्छा कर देगा? कौन ऐसा अच्छा पॉलिटिशियन होगा? कहाँ से आएंगे पॉलिटिशियंस? आपके और मेरे बच्चे ही होंगे। हम कहते हैं लो पाकिस्तान की सियासत इस काबिल नहीं है। जब आपने किसी चीज को दुरुस्त करना होता है तो आपको उस गलत चीज के अंदर सही चीज की इंटेंसिटी को बढ़ाना होता है। आपका बच्चा, आपका बच्चा, आपका बच्चा, आपका बच्चा, ये सब अगर एक पेस पर होंगे और आहिस्ता आहिस्ता ये फ्लो बढ़ता रहेगा तो इंशाल्लाह अल्लाह इस मुल्क को उठाएगा। और याद रखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रोफेसीज उठाकर पढ़िए। इस खत्ते में अल्लाह ने कोई बड़ा काम लेना है। अहादीस मौजूद हैं, जो हिंट मिलती है मुफस्सरीन और स्कॉलर्स बताते हैं, मुहद्दसीन बताते हैं, इस पूरे एरिया के अंदर जो सब कॉन्टिनेंट प्लस एशिया का एरिया बनता है, पाकिस्तान इंक्लूडेड इन इट, अल्लाह यहाँ से दीन का कोई बड़ा काम लेगा। छोड़कर भाग जाएंगे? अपना हिस्सा नहीं डलवाएंगे? हिम्मत कीजिए, अल्लाह ताला आपके साथ है। आगे सूरत का आखिरी हिस्सा शुरू हो रहा है आयत नंबर 69 से। अब आयत नंबर 69 से आयत नंबर 83 तक, मेरा ख्याल है आपके बुकलेट्स में आयत नंबर 68 गलत लिखा हुआ है। शुरू में जहाँ इंडेक्स है उसको ठीक कर लीजिएगा, 69 है, 68 सिक्स पार्ट का हिस्सा है। अब आयत नंबर 69 में आपको पूरी सूरत का एक तरह से दोबारा से रिव्यू मिलेगा। मुख्तलिफ आयात, सूरत यासीन की मुख्तलिफ आयात का रिव्यू सामने लेकर आ रही है। एक कंप्लीट, जिसको आप कहते हैं ना, क्लोजर हो रहा है सूरत का, ताकि अपने ईमान को ठीक कर लो, रसूल के मुकाम को समझ जाओ, कुरान के मुकाम को समझ जाओ और अपने लिए स्ट्रेटेजी ले लो कि तुमने जिंदगी गुजारनी कैसे है। जो अब तक सीखा है उसका रिव्यू कर लो। एक अच्छे लेसन का तरीका यही होता है, एक अच्छा टीचर वही होता है जिसको आप देखते हैं स्कूल कॉलेजेस में, जो अपने पॉइंट्स को डिस्क्राइब करने के बाद आखिर में उसकी समरी डिस्क्राइब कर देता है। सो ये आपको आयत नंबर 69 से 83 तक, अब आपको सूरत यासीन की समरी मिलेगी। अब मुझे उम्मीद है कि सूरत यासीन यहाँ से मुकम्मल करने के बाद जो आपका सूरत यासीन के बारे में पहला कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल बदल गया होगा। सूरत यासीन जिंदों के लिए है, जिंदा लोगों के पढ़ने के लिए है, सबक लेने के लिए है, कॉन्स्टेंटली अपनी अक्ल को इसके साथ अटैच करके हिदायत के रास्ते पर आने के लिए है, ये मुर्दों पर पढ़ने के लिए नहीं है। आयत नंबर 69, वमा अल्लमनाहु शिअर वमा यम बगी लहू इन हुआ इल्ला ज़िक्रुन व कुरआन मुबीन। वमा अल्लमनाहु शिअर, हमने इसको शेर नहीं सिखाया। कुरान की हिकमतों में से आपको एक हिकमत यहाँ मिल रही है। बहुत बड़ा एक एलिगेशन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरैश लगाया करते थे कि ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलाम बोलते हैं ये शायरी है। आपके लिए अल्लाह ताला की तरफ से यहाँ पर स्टेटमेंट आ गया कि ये शायरी कर ही नहीं सकते, ये शायर नहीं है। और ये वमा यम बगी लहू, इनको सूट ही नहीं करती शायरी। यम बगी हमने पीछे पढ़ा था, कहाँ आया था? सूरज के किस्से में, सूरज और चांद का कंपैरिजन देखा था कि सूरज जो है उसको सूट नहीं करता कि वो चांद को जाकर पकड़ ले। और यही लफ्ज वहां मैंने आपसे कहा था कि उसी एक लफ्ज को जो सूरज के लिए यम बगी आया है, यही लफ्ज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सूरत में इस्तेमाल हुआ है। इसलिए मुफस्सरीन ने और बहुत से मुफस्सरीन ने सूरत यासीन में सूरज और चांद के कंपैरिजन में सूरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और चांद सहाबाए कराम रदियल्लाहु अन्हुम अजमाइन को डिस्क्राइब किया है। वही लफ्ज जो सूरज के लिए आया था वो यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायरी सूट ही नहीं करते। वमा यम बगी लहू, आप पर ये अप्रोप्रिएट ही नहीं है। इन हुआ इल्ला ज़िक्रुन, ये कुछ भी नहीं है मगर एक जिक्र। व कुरान मुबीन, और एक रोशन कुरान। मुबीन के लिए मैंने आपको पिछली क्लासेस में वाजे किया था, बलाग होता है वो नसीहत जो आपके दिल को टच करे, और मुबीन कौन सी नसीहत जो आप इतनी क्लैरिटी रखे कि आपकी अकल को ट्रिगर कर दे। मुबीन का एक और मफहूम भी अरबी जुबान में किया जाता है। मुबीन कहते हैं, आप उर्दू में ट्रांसलेशन करते हैं मुबीन का, क्या करती है? रोशन, रोशन करते हैं ना, मुबीन वाजे या रोशन। मुबीन कहते हैं ऐसी चीज जो खुद भी रोशन हो और आसपास को भी रोशनी दे दे, जिसको अरबी जुबान अरबी ग्रामर पढ़ने वाले लाजिम और मुतादी कहते हैं, जो खुद भी रोशन है और सराउंडिंग को भी रोशन करती है। जैसे बल्ब, बल्ब क्या करता है? बल्ब को आप देखें, बल्ब खुद भी रोशन हो जाता है पूरा जब आप उसको ऑन करती हैं और सराउंडिंग को भी वो पूरा जो है वो रोशन कर देता है। तो मुबीन ऐसी चीज को कहते हैं जो खुद वाजे हो, कुरान का हर हुक्म वाजे है। और दूसरा मफहूम क्या है, कुरान माशरे में फुरकान दे देता है, फुरकान की लाइट दे देता है, सही और गलत की तमीज़ दे देता है, राइट और रॉन्ग में डिफ्रेंसिएशन करना सिखा देता है, चीज़ों की हकीकत वाजे कर देता है। अब आपको इस आयत के अंदर कुरान का और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम का रिव्यू मिलेगा, बिल्कुल जैसे आपने सूरत के पहले हिस्से में रिव्यू देखा था कि अल्लाह के रसूल मुरसलीन में से हैं और कुरान हिकमत वाला है। तो यहाँ पर बता दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो शायर नहीं हैं, यानी ये कुरान शायरी नहीं है। दोनों एंगल से बात आ गई। जब कह दिया कि ये कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायरी नहीं किया, तो बता दिया कि कुरान भी सिर्फ आपको शायरी की शक्ल में नहीं देखना, कुरान शायरी नहीं है। और हरूफ मुकत्तआत पर हमने बात की थी, तो हमने कहा था कि ऐसे हरूफ हैं जिसके बारे में जमहूर मुफस्सरीन का ख्याल यही है कि इसका असल मफहूम सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं। तो एक शायर कैसे ऐसे अल्फाज बोल सकता है जिसका उसको मफहूम ही मालूम ना हो। तो सूरत का शुरू आयत नंबर 69 से बाज़ मुफस्सरीन ने इस तरह कनेक्ट किया है कि ये बिल्कुल हरूफ मुकत्तआत ही की एक्सप्लेनेशन जो है वो रसूल अल्लाह के रसूल होने की दलील में लाई गई है, जिसको आयत 69 में एलैबोरेट किया गया कि आप शायर नहीं हैं। शायर ऐसी बात नहीं करता जो उसको खुद मालूम ना हो कि इसका मतलब क्या है। और हरूफ मुकत्तआत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि इसका मफहूम सिर्फ अल्लाह को मालूम है। कुरैश का मामला आपको कैसे नजर आता है? उनका जो अल्लाह के रसूल पर इल्जामात लगाने का मामला था, पहले कहा करते कि करते थे कि ये कलाम मोहम्मद ने खुद घर लिया है, जब आपने नया नया कुरान इलाके में सुनाना शुरू किया। फिर जब इन्होंने कुरान और सुनना शुरू किया और ये जानते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी हैं, जब आप माजी के किस्से बताते थे और वो किस्से जो पिछली कौमों के होते थे, और आपको बताया था कि अरब के अंदर बहुत कोई जो था वो इल्म और दर्जगाहें आम नहीं थी, तो इन्होंने फिर कहना शुरू किया कि मोहम्मद को आकर कोई सिखाता है। अगर आप सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ें तो ये कहा करते थे कि एक रैबाई का गुलाम है, ज्यू स्कॉलर का, जो आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कुरान सिखाता है। फिर जब इन्होंने मजीद कुरान सुना, और आपको पता है कि मक्की कुरान के अंदर रिदम बहुत ज्यादा है, फिर जब इन्होंने मजीद कुरान सुना कुरैश के लोगों ने और रिदम इनके कान पर पड़ा, फ्लो इनके कान पर पड़ा, तब इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये तो शायरी है, मोहम्मद तो शायरी करने लग गए हैं, नाउज़ुबिल्लाह पोजेस्ड हो गए हैं, जिन आ गया है और वो जिन इनको शायरी सिखाता है, उसकी वजह से ये जिन की वजह से ये शायरी करते हैं। तो कुरैश के हर तरह के एक्सक्यूज का इनकार जो था वो अल्लाह ताला ने कुरान के जरिए कर दिया और आयत को शुरू किया वमा अल्लम ना हो, हमने नहीं सिखाया इसको। यानी ये वो अंदाज है मां निगेशन वाला, नाफिया ला के बात को शुरू किया गया है। और आप देखें यहां से बात बिल्कुल अलग शुरू हो रही है सूरत के रिव्यू के तौर पर। तो जब किसी हिस्से का आगाज किया जा रहा है और निगेशन से आगाज किया जा रहा है, तो इसमें स्कॉलर्स कहते हैं कि उन्होंने, अल्लाह ताला ने कुरैश के सवालों को मेंशन किए बगैर जवाब ऐसे दिया कि कुरैश के सवाल जो थे वो ऑब्वियस हो गए। अल्लाह ने कहा मा अल्लमना हु शेरा, हमने इसको शेर नहीं सिखाया। यानी कुरैश क्या कहा करते थे कि इनको शेर सिखाने वाला कोई है जो इनको शायरी सिखाता है और ये शायरी करते हैं। कुरैश के ऑब्जेक्शन को मेंशन किए बगैर जवाब ने ही सारी बात वाजे कर दी। जहां तक शायरी की बात है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पर्सनली अच्छी शायरी पसंद थी। हसान बिन साबित का नाम आपने सुना है, जरा नौजवान नहीं थे, बड़ी उम्र के सहाबी थे और ये वही सहाबी थे जिनको गजवाए अहजाब के मौके पर अपॉइंट किया गया था औरतों और बच्चों के टेंट की हिफाजत के लिए। आप में से जिन लोगों ने मेरे साथ ओरिएंटेशन अटेंड की थी वहां मैंने इनका वाक्या आपको बताया था कि जब इनको कहा गया, जब इनको हजरत सफिया ने कहा कि आप जाकर देखें कोई लोग दुश्मन के हमारे टेंट पर हमला करने वाले हैं, तो उन्होंने कहा मैं नहीं जा रहा, मतलब मैं मेरे में हिम्मत नहीं है मुकाबला करने की। तो शायर थे ना, तो बस उनका इंक्लिनेशन लड़ने लड़ाने का ज्यादा नहीं था। तो हसन बिन साबित बहुत अच्छी शायरी किया करते थे। आपको आज भी जितना सही अहादीस के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डिस्क्रिप्शन मिलता है, मेन डिस्क्रिप्शन, वो आपको हसन बिन साबित से ही मिलता है। इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिजिकल ब्यूटी को जो डिफाइन किया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन बिन साबित से शायरी सुना करते थे। एक मरतबा का जिक्र आता है, और अरब में शायरी आम थी। अगर आप लोगों को अरब की हिस्ट्री मालूम हो, एंशियंट हिस्ट्री इनकी जो थी, एंशियंट अरब्स की, तो आपको बताया था कि इनका इंटरेक्शन बाहर की दुनिया से नहीं था। इनके दोनों नेबरहुड में बड़े बड़े सिविलाइजेशन और बड़े बड़े एम्पायर्स थे, पर्शियन एम्पायर थी और रोमन एम्पायर थी। लेकिन पर्शियन एम्पायर और रोमन एम्पायर ने कभी अरब में आने की कोशिश नहीं की, अरेबियन पेनिनसुला में, इसलिए कि यहाँ पर कोई उनके पास रिसोर्सेज उनको नजर नहीं आते थे। गर्मी बहुत ज्यादा थी, सहरा था, और यहाँ पर कोई मॉन्यूमेंट्स नहीं थे, कोई बड़ी बड़ी यहाँ पर कंस्ट्रक्शंस नहीं थी, कोई बिल्डिंग नहीं थी। एक बैकवर्ड कॉम थी रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर की नज़र में। ये लोग ट्रैवल करके वहां तक जाते नहीं थे, तो ये एक तरह से एक नीश के अंदर बंद थे बिल्कुल, जो अरब्स थे। इसलिए भी कहा जाता है कि अरब्स की जुबान इसलिए बहुत प्योर थी कि यहाँ बाहर के लोग अंदर नहीं आते थे और अंदर के लोग बाहर नहीं जाते थे। कराची वालों की जुबान इतनी खराब क्यों है?